चौथा स्कंद 21वां अध्याय श्लोक संख्या 22। दंड धरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षिता वृत्ति दहस्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: राजा पृथु ने कहा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूं और मैं प्रजा के ऊपर शासन करने, उसे विपत्ति से बचाने तथा वैदिक आदेश से स्थापित सामाजिक मर्यादा के अनुसार उसे आजीविका प्रदान करने के लिए यह राजदंड धारण कर रहा हूं। तात्पर्य: यह माना जाता है कि राजा की नियुक्ति श्री भगवान द्वारा अपने लोक विशेष के हित की रक्षा के लिए की जाती है। प्रत्येक लोक में एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जिस प्रकार आजकल प्रत्येक देश का एक राष्ट्रपति होता है। यदि कोई राष्ट्रपति या राजा बनता है तो यह समझना चाहिए कि यह सुअवसर ईश्वर प्रदत्त है। वैदिक पद्धति के अनुसार राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर प्रजा द्वारा उसका ईश्वर के ही समान आदर किया जाता है। वास्तव में परमेश्वर समस्त जीवात्माओं का और विशेष रूप से मनुष्यों का पालन करता है, जिससे वे उच्च पद प्राप्त करें। निम्न योनियों में अनेक जन्म लेते रहने के बाद जब जीवात्मा को मनुष्य योनि प्राप्त होती है और वह सभ्य जीवन बिताता है, तो समाज चार श्रेणियों में बट जाता है, जैसा कि श्री भगवान ने भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। चार वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और जैसा कि पृथु महाराज ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक व्यक्ति को जीविकोपार्जन का उपयुक्त साधन प्राप्त होना चाहिए, राजा या सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तथा अपने अपने व्यवसाय में लगे हों। आधुनिक समय में सरकारी या राजकीय संरक्षण प्राप्त न होने से सामाजिक व्यवस्था ढह गई है। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य अथवा कौन शूद्र है। लोग अपने को जन्म से ही वर्ण विशेष से संबंध बताते हैं। सरकार का कर्तव्य है कि वह वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करे, जिससे संपूर्ण संसार सुसंस्कृत हो सके। यदि मानव समाज चार सामाजिक वर्णों का पालन नहीं करता तो वह पशु समाज के तुल्य है, जिसमें न शांति न संपन्नता रहती है, केवल अशांति व्याप्त रहती है। आदर्श राजा के रूप में महाराज पृथु ने वैदिक वर्ण अवस्था का दृढ़ता पूर्वक पालन किया। प्रजायते इति प्रजा। प्रजा शब्द का अर्थ है जो जन्म लेता है। अतः पृथु राजा ने अपने राज्य में जन्मे सभी लोगों प्रजा नाम को सुरक्षा प्रदान की। प्रजा का अर्थ न केवल मनुष्य, वरन इसमें पशु, वृक्ष तथा अन्य सजीव प्राणी भी आते हैं। आधुनिक समाज के मूर्ख तथा धूर्त सरकार के उत्तरदायित्व क्षेत्र को नहीं जानते। पशु भी उस भूमि के नागरिक हैं जिसमें उनका जन्म होता है और उन्हें भी जीने का अधिकार प्राप्त है। पशुओं की थोक हत्या से, पशुओं की जनसंख्या में गड़बड़ी होने से कसाई देश तथा सरकार का भविष्य संकट में हो जाएगा। अनुवाद: कृष्णा, अहम् दंडधरो राजा प्रजानाम् इह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्। राजा पृथु यज्ञ स्थली में उपस्थित सभासदों को बतला रहे हैं कि हे देवियों और सज्जनों, केवल भगवान की कृपा मात्र से ही मुझे ये राजपद की प्राप्ति हुई है। और क्योंकि इस पद की प्राप्ति हुई है तो मुझे दंड धारण करना होगा। दंड धरो अहम, दंड धरो राजा। क्योंकि इस पद का कर्तव्य यही होता है। देखिए, पद, किसी भी पद को प्राप्त करने से अनेक तरह के लाभ होते हैं। जैसे कि हम अगर पति बन गए तो कई प्रकार के लाभ हमें मिल जाते हैं, पत्नी बन गए कई प्रकार के लाभ मिल जाते हैं, माता पिता बने कई प्रकार के लाभ मिल जाते हैं, और मान लीजिए कि हम समाज में कोई मंत्री बने तो अनेक प्रकार के लाभ मिल जाते हैं, राजा बने कई प्रकार के लाभ मिल जाते हैं। तो पद की प्राप्ति से अनेक तरह के लाभ मिलते हैं, लेकिन महत्व की बात यह है कि उस पद को स्वीकार करने से हमारे कर्तव्य क्या होते हैं। केवल लाभ नहीं देखना चाहिए, लाभ के लिए किसी पद की प्राप्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य निभाने के लिए हमें पद स्वीकार करना चाहिए। पद की लालसा कभी भी नहीं रखनी चाहिए, और अगर पद मिले भी और अगर पद स्वीकार करने के लिए हम मजबूर हुए भी तो केवल इसलिए कि उस पद के से संबंधित जो कर्तव्य हैं उनको निभाने के लिए, और जो लाभ उनसे मिलता है उसे न स्वीकार करें। यह है सही मनुष्य सभ्यता। तो देखिए, मनुष्य सभ्यता कितनी सूक्ष्म है, कितनी प्रगतिशील है। लेकिन आजकल आधुनिक काल में हम क्या देख रहे हैं कि लोग केवल पद की प्राप्ति चाहते हैं और उस पद में जो कर्तव्य है उनको निभाना नहीं चाहते हैं। तो राजा पृथु कह रहे हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मुझे पद की कोई अपेक्षा नहीं थी, लालसा नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भगवान ने चुना और मुझे ये कर्तव्य निभाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये राज का दंड धारण किया है। वास्तव में राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना। और पृथु महाराज से अच्छा भला कौन प्रजा का पालन कर सकता है? आखिर वो प्रजा पालन के लिए ही तो शक्तवेश अवतार बने हैं। आप जानते हैं कि भगवान के भिन्न भिन्न तरह के अवतार होते हैं, उनमें से एक है शक्त्यावेश अवतार। जिन व्यक्तियों में विशेष विभूति या शक्ति प्रदान की गई जाती है, और ये शक्ति कोई विशेष कार्य संपन्न करने हेतु दी जाती है, जैसे कि परशुराम भी शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। उनको कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की भगवान ने? दुष्ट दमन, दुष्टों का दमन करने के लिए। क्षत्रिय उस समय दुष्ट हो गए थे, तो दुष्टों को दमन करने की शक्ति परशुराम को प्रदान की गई। चार कुमार, उनको कौन सी विशेष शक्ति मिली, कौन सा विशेष ऐश्वर्य मिला? ज्ञान शक्ति। नारद मुनि, उनको कौन सी विशेष शक्ति मिली? भक्ति की शक्ति मिली। उसी तरह से अनंत शेष, उनको कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की है भगवान ने, हालांकि वो विष्णु तत्व है? भूधारण शक्ति, केवल इस भूमंडल को नहीं बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने फणों पर धारण करते हैं। और कैसे धारण करते हैं? उनको ये नहीं लगता कि ये ब्रह्मांड कितना भारी है, ये भूमंडल कितना भारी है। जैसे रुई का बीज होता है, उस तरह से वो इन सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं उतने ही आसानी से। जैसे एक सांप को, एक विशाल सांप को अगर कोई रुई का बीज मिले तो उसका बोझ उसे महसूस नहीं होगा। तो इतनी शक्ति प्रदान की है भगवान ने अनंत शेष को। उसी तरह से पृथु महाराज को भगवान ने प्रजा पालन की शक्ति प्रदान की है। तो प्रजा क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, प्रजायते इति प्रजा। ज धातु से जन्म आता है, प्रजायते मतलब जो जन्म लेता है, जो उस देश में जन्म लेते हैं उनको प्रजा कहते हैं। मतलब देखिए, यहां कोई योनि की बात नहीं आई कि अमुक योनि में जन्म लेने वाले उनको प्रजा कहते, नहीं। प्रजायते मतलब जो उस देश में उस भूमि में जन्म लेते हैं, भले वो किसी भी योनि के क्यों ना हो, उन सबको प्रजा कहते हैं। प्रजायते इति प्रजा, अर्थात केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, कीड़े, पशु पक्षी, ये सब प्रजा कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने उस देश में जन्म लिया है। एक बार प्रभुपाद जी किसी व्यक्ति से चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे, सरकार की बात हो रही थी, और वो कह रहे थे कि जो प्रजा है, जो नागरिक हैं देश के, उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि नागरिक मतलब कौन है, तो बोले नागरिक मतलब जो यहां के निवासी हैं, जिनका जन्म यहां हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या गाय का जन्म यहां नहीं हुआ, क्या इन पशुओं का जन्म यहां नहीं हुआ, इनका भी तो जन्म हुआ है यहां पे आप ही के देश में, तो उनको यहां जीने का उतना ही अधिकार है जितना आप सबको है, वो उतने ही प्रजा है जितना कि आप हैं, तो इसलिए आपको उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। गाय भी नागरिक है, कुत्ता भी नागरिक है, मच्छर भी नागरिक है, और मनुष्य भी नागरिक है। भगवान श्री कृष्ण भेदभाव नहीं करते हैं, गीता में उन्होंने स्पष्ट बताया है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तियाः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम् बीजः प्रदः पिता। वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में जितने भी सारे योनियां हैं वो सब मुझसे आते हैं और मैं उनका बीज प्रदाता हूं, मैं पिता हूं उनका, अहम बीज प्रदह पिता। बीज प्रदान करने वाला मतलब पिता, तो मैं सारे योनियों का पिता हूं और मैं इन सब की रक्षा करता हूं। तो इसलिए प्रजा मतलब सारे योनियां और सब की रक्षा करनी चाहिए। तो कौन रक्षा करेगा, रक्षा करने वाला नारदेव, जो भगवान का प्रतिनिधि है यहां पर, राजा, या जैसे यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, ये सब भगवान के प्रतिनिधि होते हैं प्रजा का पालन करने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए। तो जब ये लोग ऐसा नहीं करते तो फिर उनको दंड मिलता है। जो दंड धारण किया है उसने क्यों किया है, दुष्टों को दंड देने के लिए। प्रजा की रक्षा कैसे की जाती है, अनेक तरीकों से की जाती है। प्रजा की रक्षा की जाती है दुष्टों को दंड देकर, जो कि उनको ठीक से रहने के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। और भी आगे तात्पर्य है प्रजा की रक्षा करना, उसका क्या मतलब है और भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन प्रजा की रक्षा करने का यह भी मतलब होता है कि जो प्रजा को सताते हैं, हैरान करते हैं, उनको दंड देना। इसलिए यहां पे शब्द प्रयोग किया गया है, अहम दंड धरो राजा। कृष्ण बताते हैं, दंडो दमयताम अस्मि। दसवें अध्याय में जब वो अपने विभूतियों का और ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, उस समय भगवान ये बताते हैं कि जब भी कोई दुष्ट लोग होते हैं या कोई गलत काम होता है तो वह उन लोगों का दमन करना आवश्यक होता है। तो दमयताम, तो दम, उनका दमन करने के लिए किसी को दंड धारण करना पड़ता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, दंडो दमयताम अस्मि, कि मैं दुष्टों को दमन करने वाला हूं। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण आकर नहीं करते, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से करते हैं, और उनका प्रतिनिधि तो राजा है, नेता है, तो उसका कर्तव्य होता है कि दुष्टों को वो दंड दे, और अगर वो दुष्टों को दंड नहीं देगा तो भगवान ही उनको दंड देंगे, जिनको दंड देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया उन्होंने। तो राजा को ही दंड मिलेगा, क्योंकि राजा ने दंड नहीं दिया। इसका मतलब है कि जो अधिकारी व्यक्ति होता है, जो किसी गलत काम को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है, अगर जानते हुए भी या कभी भी नहीं जानते हुए भी उसके राज में, उसके शासन में कोई गलत काम हो और वो उसे रोकता नहीं है, उस गलत करने वाले व्यक्ति को दंड नहीं देता, तो उस अधिकारी व्यक्ति को दंड मिलता है। ये भगवान का सिस्टम है, पद्धति है। इसलिए जो समाज में, प्रजा में जो भी पाप होते हैं उसके लिए राजा जिम्मेदार होता है। तो राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को पाप से बचाए, ये प्रमुख संरक्षण है। जब राजा प्रजा का संरक्षण करता है, इसका मतलब है कि उनको पाप से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग पाप करेंगे तो खुद राजा को दंड मिलेगा भगवान से कि तुम्हारा काम था उनको पाप से बचाना, तुमने क्यों नहीं बचाया, अभी तुम्हें दंड मिलेगा। जो दो दंड धारण करता है व्यक्ति, अगर दंड का सही उपयोग नहीं करेगा तो भगवान उसी दंडे को लेकर उसी को मारेंगे, क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई। माता पिता का कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभाया, बच्चे को पाप से नहीं बचाया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो क्या होता है, फिर अगर आगे चल के बच्चा कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी माता पिता को आती है। वो कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, आप सबने सुनी होगी, कि एक बार एक चोर था, उसको पकड़ा गया, उसने खून भी किया, उसे फांसी पे चढ़ाया गया, उसे पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, आखिरी इच्छा तुम्हारी क्या है, तो उसने कहा कि मैं मेरी माँ से कुछ बोलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। और माँ जब आई तो कहने लगा कि आपके कान में कुछ बोलना है, तो कान पास मिलाए तो उसने कान काट दिए। माँ ने बोला, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या किया, मेरा कान काट दिया। उसने कहा कि वास्तव में जब आपको मुझे दंड देना चाहिए था बचपन में, जब आपने देखा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ और आपने कुछ किया नहीं, तो इसलिए मैं गलत रास्ते पर चला गया। दंड के पात्र वास्तव में आप हैं, क्योंकि आपने मुझे दंड नहीं दिया, आपने मुझे सही रास्ते पे नहीं, आप नहीं ले गए, और इसलिए मैं भी ऐसा हूं और ये मेरी दशा हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करते रहें और फिर अधिकारी को फिर दोष दे दें, आप मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, आप ही हमारा पाप, मतलब आपको, आपने हमें रोका नहीं। इसका मतलब है कि आप दंड के पात्र हैं। वैसे सही है कि जो अधिकारी व्यक्ति होते हैं, जो मंदिर में अगर कोई गलत काम हो भी तो फिर अधिकारी व्यक्ति को दंड मिलता है कृष्ण के हाथ से। इसलिए अधिकारी बनने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने के पहले, क्योंकि हर एक जिम्मेदारी में दंड धारण करना पड़ता है। तो देखिए, अगर छोटे से मंदिर के लिए इतना हो, छोटे से परिवार के लिए इतना हो, तो सारे एक देश के लिए, सारे पृथ्वी के लिए कितना बोझ होता होगा राजा के ऊपर। तो इस तरह से पृथु महाराज बता रहे हैं, अहम दंड धरो राजा, कि मैंने इस तरह से दंड धारण किया है, और पृथु महाराज ने करके भी दिखाया। जब पृथ्वी माता अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी और पृथु महाराज ने देखा कि अब कोई पाप नहीं कर रहे हैं, फिर भी पृथ्वी माता अभी अन्न नहीं दे रही है, जो कि पृथ्वी का कर्तव्य है, तो क्या किया पृथु महाराज ने, पृथ्वी माता को भी दंड देने के लिए हाजिर हो गए, तैयार हुए। और उस समय पृथ्वी माता डर के मारे गाय का रूप धारण करके वहां से भाग पड़े, लेकिन पृथु महाराज ने छोड़ा नहीं, कहा कि ठीक है, गाय का स्वरूप धारण कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, केवल बचने के लिए तुमने ये पहले तो स्त्री का शरीर लिया, स्त्री हो वैसे आप, और दूसरा गाय का शरीर, दोनों रक्षा के पात्र हैं, लेकिन आपने गलत काम किया है इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से वो हमेशा दंड देने के लिए तैयार थे, लेकिन केवल जो दंड के पात्र हैं वही मात्र, सभी को नहीं। आजकल क्या देखा जाता है कि जेलों में इतने सारे व्यक्ति पड़े हैं जो वास्तव में उनका कोई कसूर नहीं है। हमारे एक भक्त बता रहे थे वृंदावन से, वो गए थे, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो दिल्ली के एक जेल में गए थे कोई प्रोग्राम करने के लिए, और वहां कीर्तन वगैरह हुआ और वहां एक नवयुवती माताजी मिली और वो माताजी उनसे अलग से कह रही थी कि मैंने खून किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन केवल मुझ पे आरोप लगाकर मुझे यहां अंदर डाल दिया गया, मैंने कुछ नहीं किया। और ऐसे कई होते हैं। तो ये समस्या आजकल हुई है कि जिन्होंने गलत काम नहीं किया है उनको जेल में डाला जाता है, दंड दिया जाता है, और जो वास्तव में खूनी है, जो चोर है, वो सब बाहर मुक्त घूम रहे हैं इधर उधर। तो इससे क्या होता है कि समाज में उत्पात फैल जाता है और जो नेता है उनके ऊपर ये पाप का बोझ आ जाएगा। तो पृथु महाराज, उनकी दृष्टि बहुत तेज थी, हृदय बहुत शुद्ध था, इसलिए दृष्टि तेज थी, इसलिए वो तुरंत जान पाते थे कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं है, कौन मासूम है और कौन नहीं है। इस तरह से वो अच्छी तरह से दंड धारण करके बैठते थे। उसी तरह से परीक्षित महाराज भी एक आदर्श राजा की तरह प्रजा राजा राज्य भर में घूमते थे, भ्रमण करते थे कि कौन यहां दुष्ट है जो मेरी प्रजा को सता रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, और अगर कोई धर्म का पालन नहीं कर रहा होता तो उसको दंड देते। लेकिन आजकल सरकार क्या करती है, निरपेक्षवाद है ना, उसको उसका पालन, इस सिद्धांत का पालन करके कोई नास्तिक बनना है, चलो नास्तिकवाद को बढ़ा रहे हैं। तो वास्तव में जितना नास्तिकवाद को प्रोत्साहन देगी सरकार, उतना दंड मिलेगा नेताओं को, सरकार को दंड मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोई आजकल सरकार टिक नहीं पा रही है ना, सबको दंड जल्दी जल्दी मिलता है, अलग अलग तरह के दंड मिलते हैं प्रकृति के माध्यम से। प्रभु रामचंद्र जी भी इसी तरह से घूमते थे। परीक्षित महाराज जब घूमे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति, कुरूप व्यक्ति, वो एक बैल, वहां एक गाय की हत्या करने के लिए तैयार था, गाय और बैल की। बैल तो मूर्तिमान धर्म का स्वरूप है, और ये बैल के तीन पैर कट चुके थे और चौथा पैर काटने जा रहा था। तो उस समय परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया और उसको गिरफ्तार किया और उसकी हत्या करने ही वाले थे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने शरण ग्रहण किया परीक्षित महाराज का, तो परीक्षित महाराज ने उसकी हत्या नहीं की। ये व्यक्ति वास्तव में मूर्तिमान कली था। हरेक युग के, जैसे कि हरेक लोक के, ग्रह के एक अधिष्ठाता व्यक्ति या देव होते हैं, उसी तरह से हरेक युग के भी एक अधिष्ठाता व्यक्ति होते हैं। उसी तरह से कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप जो है व्यक्ति, वो वहां प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि जब तक मैं, मेरे जैसा राजा यहां पर है, यहां कोई पाप प्रवेश नहीं कर सकता मेरे राज्य में, कली भी प्रवेश नहीं कर सकती मेरे राज्य में। तो ये है अहम दंड धरो राजा, ये है सही राजा जो कली के प्रभाव को भी दूर कर दे, कली को भी दूर भगा दे अपने राज्य से। और कहा कि ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई राज, कोई जगह चाहिए तो ऐसे दूर जगह जाओ जहां पे ये चार चीजें होती हैं। कौन से? मद्यपान जहां होता है, जहां व्यभिचार होता है, जहां जुआ होता है, और जहां मांसाहार होता है, वहां उस जगह में जाओ। तो उस समय व्यक्ति ने, कली ने क्या कहा? कली ने कहा कि फिर आपके राज्य में ऐसे कोई जगह ही नहीं है, फिर मैं कहां जाऊं, क्योंकि आपके राज्य में कोई पाप नहीं होता। तो फिर राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, ऐसे जगह जाओ जहां बहुत सोना है, क्योंकि जहां बहुत सोना होगा, धन होगा, वहां ये चार चीजें आ जाती हैं। तो पृथु महाराज ने देखा कि प्रजा के संरक्षण के लिए इस तरह के गलत जो प्रभाव है उनको दूर रखना चाहिए। आजकल जैसे टेलीविजन है, इस टेलीविजन के माध्यम से कितने गलत तरह के प्रभाव आते हैं हमारी प्रजा के ऊपर, गलत विचार लोगों में आते हैं, गलत गलत तरह के सब चीजें दिखाते हैं टेलीविजन में। तो अगर सरकार इसको बढ़ाएगी और इसको बंद नहीं करेगी तो सरकार के ऊपर ये पाप का बोझ आएगा, प्रजा के ऊपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन सरकार के ऊपर भी आएगा, क्योंकि गलत तरह के प्रभाव वो प्रवेश करने दे रहे हैं प्रजा के भीतर, प्रजा के मन में। परीक्षित महाराज जैसे होना चाहिए प्रजा को, राजा को। उसने देखा कि तुम यहां रहोगे हे कली, तो यहां सबको दूषित कर दोगे, सबको पापी बना दोगे, इसलिए तुम्हें दूर रखना है मुझे, दूर जाओ यहां से। तो इसी तरह से ये कली अभी टीवी के माध्यम से प्रवेश कर रहा है, अनेक माध्यमों से, लेकिन टीवी उनका प्रमुख प्रवेश करने का द्वार है, हमारे हृदय के भीतर, हमारे राज्य में, हमारे प्रजा के भीतर। तो इस तरह से पृथु महाराज कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने दंड धारण किया है तो प्रजा का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य होता है, और पेड़ पौधे इनका भी संरक्षण करना है। ऐसे नहीं कि हम केवल पेड़ काटते रहें और फिर बोले कि गाय चरती हैं इसलिए वन नष्ट हो रहे हैं तो गायों की हत्या करो। ये आजकल हो रहा है, आप जो आप में से जो जानते हैं कि आजकल खास करके वनों में क्या हो रहा है, और पर्यावरण संरक्षण के जो लोग हैं वो लोग क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा वो क्या आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाय आजकल इतनी ज्यादा चरने लगी है लोगों की, गाय और भैंस इत्यादि, कि वो वन क्षेत्र में जाती है, वहां के सब घास वगैरह खा देती है, तो फिर क्या होता है वन की भूमि कम हो जाती है, और इसलिए गाय बहुत ज्यादा अधिक संख्या है गायों की यहां पर, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि वनों में वृक्ष को तोड़ने वाले, लकड़ी को चुराने वाले ऐसे बहुत लोग हैं, और जो अधिकारी व्यक्ति है वहां के वो इनसे हाथ में हाथ मिलाए हुए हैं, और इसलिए पेड़ गिराए जा रहे हैं, लकड़ी चोरी की जा रही है और बेचा जा रहा है काले बाजार में। तो इस तरह से क्या होता है कि वन को समाप्त करने के जिम्मेदार कौन है? ये सब लोग हैं, ना कि बेचारी गाय। गाय माता क्या करती है, कितना चरती है, कितना घास खाती है। और वैसे भी देखा जाए तो जमीन वन काटे जा रहे हैं, और जो गोचर भूमि है उसको इधर उधर लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है फैक्ट्री बनाने के लिए, कोई और कुछ शहर बनाने के लिए। जैसे थोड़े ही पिछले साल हम कानपुर गए थे, तो कानपुर में वहां गौशाला में गए थे, तो वहां जो गौशाला चलाते हैं अच्छे सज्जन हैं, उनकी बड़ी अच्छी भावना है गायों के प्रति। तो वो कह रहे थे कि यहां हमारी कितनी गोचर भूमि थी, गाय चरा करते थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि यहां जो आए हैं अधिकारी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन्होंने ये सब गोचर भूमि को हड़प कर लिया है, और बांग्लादेश से जो भी सारे रेफ्यूजी आए हैं उनको रहने के लिए जमीन दे दी है। जब हमने बताया कि गाय को चरने के लिए भूमि चाहिए तो कहे क्या गाय को चरने के लिए भूमि है, यह इतने सारे लोग हैं, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है तो गायों के लिए क्या जगह देंगे। तो ऐसे सब बात करते हैं लोग, अधिकारी व्यक्ति करते हैं। गोचर भूमि की बहुत महत्व का बहुत महत्व होता है। वास्तव में आज भी अगर आप गुजरात में जाएंगे, ऐसे कई लोग हैं, एक व्यक्ति हमें मिले थे जो बता रहे थे कि वो गुजरात के भीतर के प्रांतों में गए थे, क्योंकि अभी बहुत बाढ़ हुआ था वहां, अकाल पड़ा था। तो कह रहे हैं कि कई किसानों को मिले, और उनमें से कई मुसलमान लोग भी थे। तो उनमें से एक मुसलमान किसान कह रहा था कि आजकल गोचर भूमि रही नहीं, पहले गोचर भूमि को हम इतना पूजनीय मानते थे कि हम जूते उतारकर गोचर भूमि में जाते थे, जूते पहनकर भी गोचर भूमि में नहीं जाते थे। और ये कौन कह रहा है? एक मुसलमान किसान कह रहा है जिसकी भी गाय है बैल है। तो ये संस्कृति थी उस समय कि गोचर भूमि को पूजनीय मानते थे, क्योंकि गाय वहां चरती है, गाय वहां की घास खाती है। इस तरह से जब गोचर भूमि हड़प ली जाती है तो भी गाय चरेंगे कहां, तो इधर उधर घूमते वो वन में जाएंगे और वहां की घास खाएंगे। और साथ साथ में ये भ्रष्टाचार चल रहा है, ये लोग गलत ढंग से छुपे छुपे पेड़ों को काट रहे हैं वनों में, तो ये सब चीजें चल रही हैं, इसलिए गलत सिद्धांतों का प्रचार हो रहा है। तो वृक्षों की भी रक्षा होनी चाहिए, गायों की भी रक्षा होनी चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है, वृक्ष भी काटे जा रहे हैं, गायों की भी हत्या हो रही है, कत्लखाने खोले जा रहे हैं, और ये गाय का मांस वो फिर निर्यात कहते हैं ना, एक्सपोर्ट, निर्यात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है इस देश से, पुण्य भूमि से। तो जब गाय गो माता की रक्षा नहीं होती है, वृक्षों की रक्षा नहीं होती है, तो प्रजा की रक्षा नहीं कहलाती। मनुष्यों की रक्षा आजकल नहीं हो रही है, तो फिर गाय और अन्य योनियों की बात तो दूर है। इस तरह से जब एक बार जब प्रचेत श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में कथा आती है कि जब प्रचेत राजा प्रचिनी बहिष्यत के पुत्र थे, वो 10, वो तपस्या करने के लिए जल में गए थे, जैसे सौवरी मुनि जल में गए थे तपस्या करने के लिए, ये प्रचेत भी जल में तपस्या कर रहे थे। उस समय लोगों की ये शक्ति थी, वो कर सकते थे ऐसा। तो जब तपस्या करके बाहर आए भूमि पर, तो उन्होंने देखा कि सब जगह पेड़ ही पेड़ हैं, जंगल, बिल्कुल जंगली पेड़ सब जगह फैल गए हैं, कोई जगह ही नहीं है आदमी को चलने के लिए, रहने के लिए। जब उन्होंने ऐसे देखा, तो केवल आपने नेत्रों मात्र से आग उत्पन्न किया और सारे पेड़ों को जलाने लगे। तो जब सारे वन जलने लगे, तो पेड़ों के समाज में हाहाकार मच गया कि हमें ये अपनी अग्नि से सब जला रहे हैं, हम सब नष्ट होते जा रहे हैं। तो उस समय सोमदेव, चंद्रदेव, जो कि पेड़ों के, वनस्पतियों के देव हैं, देवता हैं, वो आए और प्रार्थना करने लगे प्रचेतों से कि आप इनकी हत्या क्यों कर रहे हैं, ये भी आपकी प्रजा है, आप आगे चल के राजा बनने वाले हैं, तो आप इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। प्रजायते इति प्रजा, इनका भी जन्म तो आपके राज्य में हुआ है, तो ये भी आपके संरक्षण के पात्र हैं, इसलिए आप इनकी हत्या नहीं कीजिए। और उन्होंने एक कन्या, इनका नाम था मरीषा, उनको इनके हवाले कर दिया और फिर उनसे विवाह हुआ। तो इस तरह से प्रचेत शांत हो गए और वृक्षों को जला देना उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह से पृथु महाराज यहां इस बात को कह रहे हैं कि अहम दंड धरो राजा प्रजा नाम इह योजिता, मैंने दंड धारण किया है, राजपद को स्वीकार किया है प्रजा का संरक्षण करने के लिए, पाप से उनको बचाने के लिए, दुष्टों से उनको बचाने के लिए। लेकिन प्रजा का संरक्षण और भी एक तरीके से होता है, वो कौन सा, वो यहां बता रहे हैं। रक्षिता वृत्ति दह स्वेशु सेतुषु स्थापिता पृथक, अर्थात हर एक व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार सही सही कार्य में स्थित करने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजा का यह भी कर्तव्य होता है कि देखना कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र, और इस हिसाब से उनको अलग अलग तरह के कार्यों में लगा देना। अगर किसी के ब्राह्मण की प्रवृत्ति है तो उसे ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है तो राजा को उसे दंड देना चाहिए, और अगर कोई ब्राह्मण होकर कोई गलत काम करता है तो और भी दंड देना चाहिए। उसी तरह से कोई क्षत्रिय है और क्षत्रिय प्रजा का संरक्षण करने के बजाय प्रजा को सता रहा है तो उनको दंड देना चाहिए। उसी तरह से वैश्य, वैश्य कोई अगर गलत काम कर रहा है और जो प्रजा है उनको धोखा देकर जो है गलत चीजें दे रहा है, आजकल तो बहुत चलता है, सभी लोग करते हैं प्राय आजकल, तो उस वैश्य को दंड देना चाहिए। और शूद्र अगर अपना काम नहीं करता है तो उनको भी दंड देना चाहिए, ये राजा का काम है। लेकिन आजकल ये नहीं देख रहे हैं सरकार या राजा कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है, ये 4 वर्ण क्या है। सभी को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, यही एक चल रहा है, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, आजकल कंप्यूटर वाला बनो, ये चल रहा है। लेकिन ये वैदिक पद्धति नहीं है। वैदिक पद्धति है कि अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार सबको अलग अलग तरह के कार्य करने चाहिए। और अलग अलग प्रवृत्तियां ये क्या है, ये भगवत गीता में भगवान ने वर्णन किया हुआ है, श्रमो दमस तपह शौचम क्षांतिर आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। यह ब्राह्मण, ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए, शमः शांत होना चाहिए, दमः अपने इंद्रियों को दमन कर लिया होना चाहिए, त तपः तपस्वी होना चाहिए, शौच मतलब शुद्ध होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान दोनों होने चाहिए, आस्तिक्यम धार्मिकता होनी चाहिए, शांति ही सहनशीलता होनी चाहिए, आर्जवम मतलब उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। यह है ब्राह्मण। तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण है वो ब्राह्मण कहलाता है, और ब्राह्मण के जो कार्य है उस व्यक्ति को करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब बालक गुरुकुल में भर्ती किया जाता था तो जैसे जैसे बालक बड़ा होता तो जो गुरु होते माता पिता के साथ में और दूसरे जो बुजुर्ग होते उनके साथ में इस बच्चे के लक्षण को देखते कि इस बच्चे के क्या लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, क्षत्रिय के गुण हैं, कौन से गुण हैं, उस हिसाब से उसे अमुक तरह के कार्यों में लगाते थे। तो जिस तरह से ब्राह्मण के ऐसे गुण हैं उसी तरह से क्षत्रिय के भी हैं। क्षत्रिय के कौन से गुण हैं? शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। क्षात्र मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय का यह काम होता है। शौर्य मतलब बहुत शूरवीर होना चाहिए, तेज है बलवान होना चाहिए, धृति मतलब दृढ़वान होना चाहिए, दृढ़ता उसमें होनी चाहिए, दाक्ष्यम अर्थात दक्ष होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, युद्धे च अपलायनम जो युद्ध से कभी पीठ दिखाकर नहीं जाता, जो भागता नहीं युद्ध से, दानम दान की भावना होनी चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए दान देने के लिए, और ईश्वर भावश्च प्रजा का नेतृत्व करने के लिए वो क्षमता होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसे गुण दिखाते हैं उनको क्षत्रियों के कार्यों में लगा देना चाहिए। और वैश्य के क्या कार्य होते हैं? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा करना और वाणिज्य। वाणिज्य मतलब ये नहीं कि हम बड़े बड़े फैक्ट्रियां खड़े करें, नहीं, वाणिज्य मतलब जो भी थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ करता था, लेना देना, वो उस तरह के कार बिजनेस वो करते थे। तो आगे चल के शूद्र परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। और शूद्र का कार्य क्या होता है? दूसरों की सेवा करना। तो इस तरह से चारों वर्णों के अनुसार लोगों को अपने अपने कार्यों में रत करना, ये राजा का काम होता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ऐसे कार्य करने से फिर वो भगवान की पूजा कर सकता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः समसिद्धिम लभते नरः, कि स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत, अभिरत मतलब जब आदमी लग जाता है, युक्त हो जाता है, स्वे स्वे कर्मण्य अपने अपने वर्ण के अनुसार जो कर्म करने लगता है, समसिद्धिम लभते नरः, वो समसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। अगर कोई आदमी अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? और ये समसिद्धि क्या है? अतः पुंबीर द्विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम्। कि अपने वर्णों और आश्रमों के अनुसार जो कार्य करते हैं उनकी समसिद्धि है कि भगवान श्री हरि को प्रसन्न करें। इस तरह से हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार, इस पद में भगवान ने ही मुझे डाला है, इस सेवा में भगवान ने ही मुझे लगाया है, उनकी कृपा के अनुसार मुझे ये पद की प्राप्ति हुई है, इन सुविधाओं की प्राप्ति हुई है, और उनके संतुष्टि के लिए मुझे कार्य करना चाहिए, और मेरे कर्मों का फल उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। ये है इसका मतलब, समसिद्धि लभते नरः। तो इस तरह से ये राजा का कर्तव्य होता है। तो देखिए राजा बनना कोई छोटी बात नहीं है। राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि केवल पार्लियामेंट में बैठे, संसद में बैठे और कानून लगाएं, कानून बनाएं। हर एक व्यक्ति धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं, ये देखना राजा का बहुत बड़ा काम रहता है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मैं भी दंड, मैंने दंड धारण किया है तो मैं भी ये देख रहा हूं कि वर्णाश्रम के अनुसार सभी लोग अपने अपने जगह में अभिरत हैं या नहीं है। तो देखिए, इसलिए पृथु महाराज को प्रजा पालन के लिए शक्त्यावेश अवतार मानते हैं, क्योंकि वास्तव में जो राजा को करना चाहिए उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए पृथु महाराज आदर्श राजा है, आदर्श नेता है। तो हर एक व्यक्ति को इनसे सीखना चाहिए कि नेतृत्व करना हो तो कैसे करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ने कहा कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है। अगर वो भगवान की इच्छानुसार या आदेश अनुसार राज्य नहीं करता है तो तभी भी क्या वो ईश्वर का प्रतिनिधि है?
ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन अपना प्रतिनिधित्व को निभा नहीं रहा है ठीक से, इसलिए उसको दंड मिलेगा। प्रतिनिधि रहता है लेकिन जो उसका कर्तव्य है क्योंकि वो नहीं कर रहा तो उसकी गलती है वो।
जैसा कि आपने कहा जो चार वर्ण है और उनके गुण है, क्या वो गुण अगर कोई क्षत्रिय है वैश्य है क्या वो ब्राह्मण के गुण ला सकता है या उसमें गुण में वो वृद्धि कर सकता है क्या, ब्राह्मण के गुण में आ सकता है ऐसा ऊपर वो जा सकता है क्या?
बहुत कठिन है। जैसे विश्वामित्र पहले राजा थे और उनको ब्राह्मण बनना था क्योंकि उन्होंने वशिष्ठ मुनि का ब्रह्म तेज देखा और उनको ईर्ष्या हुई कि अकेले ब्राह्मण ने अपने ब्रह्म दंड से ही मेरे सारे सेना को नष्ट कर दिया एक हुंकार मात्र से, और उनके पास ऐसी एक सुरभि गाय है नंदिनी जो कि इतना बड़ा दावत कर सकती है, कामधेनु गाय है। तो ब्रह्म तेज से अगर ये सब हो सकता है तो मेरा राजा का ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं इसके सामने है, तो भला ये है कि मैं एक ब्राह्मण बनूं? तो ब्राह्मण बनना थोड़ी इतना आसान काम था, ब्रह्म ऋषि बनना था उनको, लेकिन उनके अंदर प्रवृत्ति थी वैसे, तो उनको कई सालों तक लंबी लंबी तपस्या, कड़ी तपस्या करने पड़ी फिर वो ब्रह्म ऋषि बन पाए। वो लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी उनको बहुत तपस्या करना पड़ा। तो आदमी का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव बदलना बहुत कठिन होता है, इसलिए आदमी को अपना स्वभाव बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अपने अपने प्रवृत्तियां, अपनी अपनी कलाएं, शक्तियां, गुण जो भी है भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, बजाय ये कि हम सब गुण अपने वर्ण को बदलने का प्रयास करें। जैसे आजकल इस्कॉन संस्था में वर्णाश्रम की स्थापना करने के लिए भी बहुत बातचीत चल रही है, लेकिन कैसे स्थापना करें इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, किस तरह से स्थापन करें। और हम लोग दूसरी दीक्षा देते हैं, सभी को देते हैं, तो अभी हर एक व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता है क्योंकि ये एक प्रेस्टीज का मामला हो गया है। लोगों को गलत ये है, जिसकी प्रवृत्ति है वो ब्राह्मण है, जिसकी ब्राह्मण के गुण नहीं है वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। तो आधुनिक काल में क्या है कि हम सोचते हैं ठीक है ब्राह्मण क्षेत्र जो भी हो कोई बात नहीं, हम सब वैष्णव हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने ये दूसरी दीक्षा सबको देने के लिए अनुमति क्यों दी? क्योंकि वो ये समाज को बताना चाहते थे कि ये मत सोचो कि वैष्णव कोई कम है ब्राह्मण से, शूद्र परिवार से भी क्यों ना जन्म लिया हो उसने, अगर वो वैष्णव है तो ब्राह्मण से भी परे है वो। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात को समाज के सामने रखने के लिए उन्होंने जनेऊ वगैरह देना, ये उपनयन संस्कार वगैरह कराना शुरू किया वैष्णवों में, जो वैष्णवों में पहले था नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय तक वैष्णव इन सब संस्कारों में नहीं जाते थे, वैदिक संस्कारों में, उपनयन संस्कार इत्यादि, केवल भगवान का भजन करते रहो बस, वैष्णव है तो ब्राह्मण के परे हो गए हो। तो ये कारण था सबको ब्राह्मण दीक्षा देने का। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी ठीक है अभी मुझे ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली तो क्या होगा, है ना, मैं फिर ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा, वो स्टेटस मेरा नहीं होगा भक्तों के समाज में, ये सब गलत विचार है। तो अगर वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना है तो हमें सोचना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य में लगाना होगा, है ना।
प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारी संस्था ब्राह्मण बनाने के लिए की गई है।
हाँ, ब्राह्मण मतलब कि जो जाके प्रचार करेंगे, कृष्ण कथा कहेंगे। हाँ, तो प्रवृत्ति को सभी को नहीं, सभी की नहीं हो सकती, सभी लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते। बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इसीलिए जो जिसकी प्रवृत्ति जैसे भी क्यों ना हो, बस भगवान की सेवा में उसे लगाओ।